न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। आचार्य यम बालक नचिकेता के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बालक नचिकेता ने प्रश्न करते समय आत्मतत्व के विषय में कहा था, धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। आत्मतत्व धर्म से परे हैं, अधर्म से परे हैं, कार्य कारण से परे हैं, काल से परे हैं। ऐसा आत्मतत्व आप मेरे को कहिए, धर्म और अधर्म से अलग, माने वो धर्मजन्य नहीं है, न क्रिया है अथवा न क्रियाजन्य फल है। धर्म क्रिया प्रधान होता है, स्वर्ग कामो एजेत आदि जो भी यज्ञ है वो क्रिया प्रधान है। देवत्वोद्देशेन द्रव्य त्यागो यज्ञ और यज्ञादिरेव धर्म। अब आदि शब्द से आप बहुत सारी क्रियाएं ले लीजिए, तो आत्मतत्व यज्ञात्मिका क्रिया नहीं है और यज्ञ जन्य जो स्वर्गादि फल है वो भी नहीं है। ये धर्मात् अन्यत्र का अर्थ है, क्रिया नहीं और क्रियाजन्य फल नहीं। और इसी का विस्तार किया उत्तर के रूप में, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, कि वो अज हैं। न जायते, जो वस्तु पैदा होती हैं वो क्रियाजन्य होती है, जो भी वस्तु पैदा होती हैं वो क्रियाजन्य होती हैं और स्वयं वो क्रिया का आधार होती है। क्रियाजन्य क्रिया का यदि आधार न बने तो उस वस्तु में कोई विक्रिया संभव नहीं है। वस्तु क्रिया से जन्य हो और क्रिया का आधार हो तभी उसमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि वस्तु में क्रिया से जन्य क्रिया पैदा हो जाती है तब वो किसी विकार को प्राप्त होने की योग्यता उसमें आ जाती है। जैसे उदाहरण में आप घड़ा बना रहे हैं, परम पूज्य महाराज श्री ने कहा जैसे आप घड़ा बना रहे हैं तो घड़ा बनाते समय पहले मिट्टी का गोला बना देते हैं और वो मिट्टी का गोला उस चक्के पर रखा जाता है, चक्र पर, जो कुम्हार का चक्र होता है उसके ऊपर गोला रखता है और उसके बाद उसको घुमाता है। तो सर्वप्रथम क्रिया तो उसके हाथों में है, यदि हाथ न हिले कुम्हार के तो चक्र नहीं हिल सकता है। तो चक्र की जो क्रिया है घूमना है वो हस्तजन्य है, हस्तक्रियाजन्य है। पहले उन्होंने हाथ को घुमाया और हाथ घुमाने की जो क्रिया है वो चक्र में आ गई, चक्र भी क्रिया का आधार बना, हाथ क्रिया का हाथ बना, क्रिया का आधार हाथ बना, और उसके बाद वो चक्र भी क्रिया का आधार बना, उस चक्र में भी अब वो क्रिया होने लगी। अब वो चक्र की जो क्रिया है उस मिट्टी के गोले में न पहुंचे तो मिट्टी का गोला घड़ा कैसे बनेगा, इसलिए वो क्रिया चक्र की क्रिया उस मिट्टी के गोले में आना बहुत जरूरी है। इसलिए चक्र की क्रिया से जन्य क्रिया हुई, वो क्रिया उस गोले में आ गई, अब उस गोले में भी क्रिया है, वो गोला भी क्रिया का आधार बना। यदि वो गोला मिट्टी का क्रिया का आधार न बने तो वो घड़े के रूप में बदलेगा कैसे, इसलिए कर्ता की क्रिया जब तक कारण में नहीं पहुंचती है, जब तक कारण क्रिया का आधार नहीं बनता तब तक उसमें विकार संभव नहीं है। दुनिया में जो भी कार्य पदार्थ है उस कार्य पदार्थ में क्रिया का होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर कहते हैं कि वो आत्म तत्व जो आपने बोला धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र, वो क्रियाजन्य नहीं है और न क्रियाजन्य फल है। अब इस 19वें श्लोक में आचार्य यम कहते हैं हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानी तो नायम हंती न हन्यते। अब ये बात बहुत ध्यान दे के आप श्रवण करेंगे। मैंने आपको अभी अभी एक नियम बताया था, जो भी वस्तु कार्य होती हैं वो जब तक क्रिया का आधार नहीं बनती तब तक उसका विकास या विकार संभव नहीं है, उसमें क्रिया बहुत जरूरी है। जैसे हम जमीन के अंदर बीज डालते हैं तो जमीन के अंदर बीज डालने के बाद भूमि का संयोग, जल का संयोग उस बीज के साथ हो जाता है और उसके बाद फिर उस बीज में भी क्रिया होना शुरू हो जाती है। वो जो जलीय संयोग है वो बीज को फुलाता है और उसके अंदर एक गर्मी होती है जमीन के अंदर, तब जाकर के उसके अंदर क्रिया बनती है और वो क्रिया उसमें विकार पैदा करती है, उसके ऊपर के आवरण को तोड़ती है और उस आवरण को तोड़ के अंकुर पैदा हो जाता है, तब वो बीज भी क्रिया का आधार बना और वो जो अंकुर पैदा होके उठने लगता है तो वहां पर भी क्रिया है। वस्तु यदि क्रिया का आधार न बने तो उस वस्तु में विकार या विकास संभव नहीं है। अब आत्मतत्व के संदर्भ में हम सोचे हंता चेन मन्यते हंतुम, आचार्य यम कहते हैं कि आत्मतत्व न जन्मता है न पैदा होता है, उसी को विस्तार दे रहे हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं मारूंगा, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं मरूंगा, कोई सोचता है कि मैं मारने वाला हूं, कोई सोचता है कि मैं मरने वाला हूं। तो आचार्य यम कहते हैं कि आत्म तत्व न मारने वाला है और न मरने वाला है, तो उसको मारने वाली कितनी चीजें हैं। मारने वाली नारायण हमारे पास सबसे मजबूत चीजें हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। आप आकाश तत्व भी ले लीजिए, ये पांच भौतिक शरीर हैं। अब हम लोग विचार करते हैं कि मरण क्रिया या मारण क्रिया का प्रभाव आत्मसत्ता पर संभव है कि नहीं। मैंने आपको सूत्र बताया, ये आप याद रखोगे कि जब तक उस वस्तु में क्रिया ना हो तब तक उस वस्तु को मारना ही संभव नहीं है, न उसको आप पैदा कर सकते हैं। यदि वस्तु में क्रिया ना हो तो न उसको आप पैदा कर सकते हैं और न उसको आप मार सकते हैं। और आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो पैदा होना और मारना या मरना, मिटना, विनष्ट होना, ये कोई अलग क्रिया नहीं है, ये एक देखने का ढंग है। इसको आप जन्म बोलते हैं, जिसको आप मृत्यु बोलते हैं, ये दोनों भी क्रियाएं हैं। लेकिन किसी क्रिया को आप जन्म बोलते हैं और किसी क्रिया को आप मरना बोलते हैं, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है। आप किसको विकास बोलते हैं और किसको विनाश, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है। परम पूज्य महाराज श्री ने सुंदर दृष्टांत दिया, बहुत मजेदार दृष्टा है। कोई व्यक्ति बकरी की पूजा कर रहा है और बहुत अच्छी तरह से मंत्र बोल के तांत्रिक रूप से पूजा कर रहा है, उसको तिलक लगा रहा है, उसको माला पहना रहा है और उसको कुछ खिला भी रहा है, उसको चना खिला रहा है, दाल खिला रहा है और उसको प्रणाम भी कर रहा है। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है? आप उसको पहले की क्रियाओं को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो जो बकरा जी समझदार होगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको भी तो दाल खिलाई जा रही है, उसके गले में माला डाली जा रही है, उसके पीठ पर हाथ फेरा जा रहा है। उसकी जो क्रिया है, आप उस क्रिया को क्या कहेंगे? क्या उस आदमी को या ये बोलेंगे कि वो कितना दयालु है? वो आदमी कितना दयालु है कि उसको माला पहनाया, तिलक लगाया, उसको दाल खिलाई, पीठ पर हाथ फेरा, थपथपाया, ये सारी क्रियाएं होती हैं। और उसके बाद उसने उसको मार दिया तो आप क्या कहेंगे? उसकी वो दया कहेंगे? आप उसको किस रूप में लेंगे? कितना दयालु व्यक्ति है आप ऐसा बोलेंगे? वो दया नहीं है, आपका दृष्टिकोण क्या है, देखने का दृष्टिकोण क्या है। वस्तुतः वो जो क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं वो मृत्यु का कारण है, वो मारने की प्रक्रिया का अंग है, वो बाहर नहीं है। लेकिन आपका एक देखने का दृष्टिकोण, ये पूजा है, आप बोलते हैं पूजा है, उसका संवर्धन है और उसको क्रिया जो है मारने की क्रिया है, लेकिन वो मारने की क्रिया का अंग क्रिया है, वो उसके बिना वो नहीं कर सकता है, वो पूजा करना है, उसको बलि चढ़ाना है। तो ये क्रिया जो है जिसको आप विकास कहते हैं और जिसको आप विनाश कहते हैं, ये आपके दृष्टि पर निर्भर है। जैसे उदाहरण में कोई मकान गिर रहा है, व्यक्ति गिरा रहा है, मकान गिरा रहा है क्योंकि उसको बहुत बड़ा मकान बनाना है, तो आप उसको क्या कहेंगे? विनाश कहेंगे कि विकास कहेंगे? बहुत बड़े बड़े बुलडोजर आपने लगाया और बहुत क्रूरता से अपने सारे मकान को तहस नहस कर दिया, तोड़ डाला, उसकी दीवारें, उसकी अलमारियां, जो और भी बहुत सारा सामान कीमती था उसमें, उसको भी अपने एकदम तोड़ फाड़ दिया। आप क्या कहते हैं? उसको क्या बोलोगे आप उसको विकास बोलेंगे? और कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई और उन्होंने तोड़ दिया तो आप विनाश बोल देंगे। लेकिन आप उस क्रिया को आप देखना, उस क्रिया को देखना, उस क्रिया में और उस क्रिया में अंतर क्या है? जिसको आप विनाश बोल रहे हैं और जिसको आप विकास बोल रहे हैं, दोनों क्रियाओं में अंतर नहीं, केवल भावना में अंतर है। और मान लो वहीं पर दूसरे लोग खड़े हैं और वो बोलेंगे, अरे ये मकान तो रास्ते में था, और गवर्नमेंट की स्कीम आई, गवर्नमेंट ने तोड़ डाला, अब ये चौड़ा होगा मकान, रास्ता बहुत चौड़ा होगा, चलने फिरने के लिए बहुत आनंद आएगा। अब वो लोग क्या देखेंगे उसको, वहां मालिक छाती पीटेगा कि विनाश हो गया, विनाश हो गया, हाय हाय मर गया, मेरा मकान टूट गया। और वहीं पर जो बाकी के लोग हैं, ओहो बहुत अच्छा है, अभी रोड बहुत बड़ा बनेगा। अब उसको एक व्यक्ति विकास देख रहा और दूसरा व्यक्ति विनाश देख रहा है, तो विकास है कि विनाश, ये दोनों चीजें हमारी दृष्टि पर निर्भर है। हम उसको विनाश समझते हैं कि हम उसको विकास समझते हैं। इसलिए किसी भी विकास के साथ विनाश जुड़ा हुआ है और किसी भी विनाश के साथ विकास जुड़ा हुआ है। कोई मरता है तो दूसरा पैदा होता है, कोई पैदा होता है तो कोई मरता है, बिना मरे पैदा होना संभव ही नहीं है। परिवर्तन की प्रक्रिया का आधार बनकर एक बीज अंकुर को पैदा करता है और उसी परिवर्तन की प्रक्रिया का आधार बनकर वो फूल बन जाता है, उसी परिवर्तन की प्रक्रिया का आधार बनकर वो पेड़ बनता है, बहुत बड़ा बनता है, और उसी परिवर्तन की प्रक्रिया का आश्रय लेकर अंत में मिट जाता है। लेकिन आप बहुत तत्व दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर एक रस क्रिया है, वो परिवर्तन की प्रक्रिया है, वो परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, लेकिन आप उस परिवर्तन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। किसी परिवर्तन को आप विकास कहेंगे जो हमारे अनुकूल हो, और किसी परिवर्तन को विनाश कहेंगे जो हमारे प्रतिकूल। इसलिए ब्रह्मभुज महाराजेश्वर ने कहा कि यह हमारी दृष्टि है, हम उसको विकास समझते हैं कि हम उसको विनाश समझते हैं। इसलिए कोई आदमी समझता है इसको मैं मार रहा हूं, और कोई समझता है कि मैं मर रहा हूं, और ये दोनों क्रियाएं हैं, यहां दोनों क्रियाएं, और दोनों क्रियाओं का जो आधार है वो द्रव्य है। आप ध्यान दें, अब यहां हम बहुत सूक्ष्म चिंतन करेंगे। हंता चेत हंतुम, एक मारने वाला है और दूसरा मरने वाला, और जो मारने वाला है वो भी क्रिया का आधार है, और जो मरने वाला है वो भी क्रिया का आधार है। और जब तक वो क्रिया का आधार नहीं बनेगा तब तक न वो मारने वाला बनेगा और न तब तक वो मरने वाला। इसलिए जहां पर भी आप सुनते हैं ये संपूर्ण सृष्टि का आधार कर्म है, क्रियाजन्य ये सारा संसार है। भगवान ने गीता श्रीमद् भागवत में कहा कर्मणा जायते जंतु, ये सारी जो सृष्टि है ये जीव जंतु है वो कर्मणा जायते, कर्म से पैदा होते हैं। मारने वाला भी क्रिया का आधार है, कर्म का आधार है, और मरने वाला भी, मरने के लिए भी तो क्रिया चाहिए ना, बिना क्रिया वो कैसे मरेगा। नवीन न्यायिकों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, उन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया है, एक ऐसी क्रिया जो शब्द को पैदा करती है और एक दूसरी क्रिया बिना शब्द को पैदा किए, संयोग। कभी आपने ध्यान दिया होगा जैसे कि मान लो दो पदार्थ का द्रव्य रे वो संयोग, वो बोलते कि दो पदार्थ द्रव्य जो है द्रव्यों का संयोग होता है, तो वो जो संयोग है वो दो द्रव्यों में जब संयोग होता है तो दोनों द्रव्य क्रिया का आधार होते हैं। दोनों द्रव्य जैसे दो अंगुलियों का जो संयोग है ये दोनों द्रव्य है और इसको द्रव्य बोलते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु इसको द्रव्य बोलते हैं, नव द्रव्य है। और ये जो संयोग होता है वो बोलते कि क्रिया का आधार भी है और ये संयोग हुआ, ये संयोग हुआ, इसको संयोग संबंध बोलते हैं। अब ये जो संयोग है ये संयोग शब्द को पैदा कर रहा है कि बिना शब्द को पैदा किए हैं। अब यह आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या, दो अंगुलियां तो मिल रही लेकिन आपको कुछ सुनाई दिया, ये दोनों अंगुलियां क्रिया का आधार है और उस क्रिया के कारण दोनों में संयोग हुआ है, लेकिन ये संयोग जो हुआ ये शब्द जन्य है, शब्द को पैदा किया हुआ है कि बिना शब्द बिना शब्द ये संबंध तो बना, लेकिन किसी नए शब्द को पैदा नहीं किया, केवल अंगुली द्वय संयोग। लेकिन वही मैं ऐसे ताली बजा दी तो मैंने ताली बजा दी तो वहां पर भी क्रिया बनी। ध्यान देना, ये दो द्रव्य हैं और ये आए और आने के बाद ताली बजी, तो ताली का मतलब क्या है? यदि मैं यूं करूं तो आप ताली नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे पक्का। आज यदि मैं यूं बोलूं तो हाथ ही जोड़ा है मैंने, मैंने पहली क्रिया में भी हाथ जोड़ा है और मैंने अभी की क्रिया में भी हाथ जोड़ा है, लेकिन आप दूसरी क्रिया को क्या बोलोगे? आपने ताली बजा दी महाराज, आप ये नहीं कहोगे कि प्रणाम किया है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि एक ने शब्द को पैदा किया और इसीलिए उसको बोलते आभिघात। इसको क्या बोलते हैं? आभिघात। आप कभी बच्चे के गाल पर धीरे से ऐसे हाथ लगाओ और थोड़ा सा तो गाल पर आप धीरे से हाथ लगाओगे, संबंध तो हुआ, संयोग तो हुआ, लेकिन उसको चाटा नहीं बोलेगा वो। भैया चाटे में भी तो गाल में हाथ लगता है, लेकिन चाटा किसको बोला जाता है? जहां शब्द को पैदा करे हो। आज भी शब्द यदि पैदा ना हो तो उसको चोट ही नहीं लगी। ध्यान देना, जितना बड़ा शब्द निकले उतनी बड़ी चोट। अब आप धीरे से छोड़ोगे तो कोई शब्द ही पैदा नहीं हो। थोड़ा जोर से मारो और थोड़ा जोर से मारो, आप जितना जोर से मारेंगे, इसलिए आपका वैयाकरण का सिद्धांत निकलता है इसमें से। ये सारे शास्त्र जो है ना कहीं सत्य के करीब होते हैं। दुनिया में जो भी वस्तु पैदा होती है वो कहते कि शब्द जन्य है, इसलिए उन्होंने कहा विस्फोट है ना, शब्द को उन्होंने विस्फोट बोला, स्फोट बोला, स्फोटवाद। अब बस बात वही की वही आई। वो कहते हैं कि किसी वस्तु को पैदा करना हो तो वहां शब्द होता है, वहां क्रिया होगी, क्रिया आपस में टकराएंगे, दो चीजें आपस में जब टकराएगी तो वहां पर शब्द होना अनिवार्य है। और जितना ज्यादा आभिघात होगा, आभिघात दो चीजें जितना ज्यादा आपस में टकराएगी वहां शब्द पैदा होगा, और वो कभी वही शब्द है जो पैदा करता है, वस्तु को पैदा करता है। अरे आप कभी ऐसा पूरा मकान गिर जाए और आपको शब्द ही सुनाई नहीं दे। अच्छा कल्पना करो मकान गिर जाए और कोई उसमें शब्द ही न निकले तो आपको विनाश मालूम पड़ेगा कि नहीं? कभी आपने पिक्चर देखा होगा और उस पिक्चर को महत्वपूर्ण वो चित्र नहीं बनाते हैं, उसकी जो बैक म्यूजिक होती है ना, वो पीछे से जो शब्द होते हैं, जो म्यूजिक होती है, वो उस चीज को बहुत भयानक बना देती है। आप डरते चित्र से नहीं है, आप चित्र से डरते नहीं है, उस चित्र के पीछे जो भयानक शब्द होता है वो शब्द ही आपको रोमांचित करता है, और वो शब्द उस पिक्चर के चित्रों को महत्वपूर्ण बनाता है। आप सामान्य कुत्ता आपके सामने से गुजर जाए आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन वही कुत्ता पिक्चर में हो बोलने लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो नया कहते इतना महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए कहते हैं कि जब आप जो बिग बैंड क्या है वो वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और वो इतना बड़ा विस्फोट बहुत कितना बड़ा रहा होगा वो, अरे उस शब्द उस विस्फोट ने भी कई नक्षत्र ग्रह तारों को इधर उधर कर दिया होगा, इतना बड़ा अवसर। तो इसको बोलते आभिघात। दो वस्तुएं जब टकराती हैं अथवा उसी वस्तु में जब शब्द होता है तो वो वस्तु जो है किसी न किसी रूप में विकृत हो जाती है, वो संस्कृत हो जाती है, वो विकास को प्राप्त करती हैं, वो विनाश को प्राप्त। वो तो आपका दृष्टिकोण है, अब वो विकास और विनाश की प्रक्रिया आपकी हुई। अब हम लोग विचार करते हैं कि आत्मा को हमको मारना है, किसको मारना है? हमको आत्मा को मारना है। अब आत्मा को मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबसे बड़ी बात, आप उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, बिना जुड़े आत्मा के साथ बिना जुड़े आप उसको नहीं मार सकते। मैंने आपको एक सूत्र दिया था, बिना वो क्रिया का आधार बने वस्तु ना उसको आप मार सकते हैं, ना उसको विकसित कर सकते हैं, ना आप उसको विकृत कर सकते हैं। वहां से जुड़ना, अच्छा आप किसी आदमी को बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं, आप उसे बिना जुड़े कैसे बनाओगे? आप बिना जुड़े आप उस व्यक्ति को कैसे मिटाओगे, विकृत कैसे करो? मैंने आपका जो संबंध है, पहली बात, अब आप यहां तीन चीजें ले लीजिए। पहली, कर्ता में क्रिया होनी चाहिए और कर्ता की क्रिया के द्वारा आपको जिसको मारना है उसके साथ आपको संबंधित होना पड़ेगा। कर्ता की क्रिया और क्रियाजन्य संबंध, आप थोड़े शब्दों पर ध्यान दें। अब इन शब्दों का कोई हिंदी में अनुवाद नहीं है, इन शब्दों को ऐसे बोलना पड़ेगा। पहले कर्ता, कर्ता माने मारने वाला, मारण क्रिया का जो कर्ता है उसके अंदर क्रिया होना चाहिए, क्रिया का आधार बनाओ। और क्रिया का आधार बनकर के अब जिसको मारना है उसके साथ संबंध जोड़ना है, क्रियाजन्य संबंध। क्योंकि बिना संबंध आप अपनी क्रिया उस वस्तु में कैसे देंगे? आपको उसको क्रिया देना है, क्योंकि उसको क्रिया दिए बिना, उसको हिलाए बिना आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर्ता की क्रिया और क्रियाजन्य उसके साथ संबंध, और संबंध के बाद फिर जिसको मारना है उसमें आपको क्रिया देना है, वो क्रिया का आधार बने। अब जैसे मान लो कि आपको गांव का उदाहरण बता देते हैं, जैसे कि आपको, आप बहुत सुंदर एक आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ के आप आम खाना चाहते हैं, बहुत मीठा आम है वो, और आप जाकर क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत तेज तर्रार पेड़ पर चढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़ करके क्या करते हैं, डाल को पकड़ के हिला देते हैं। और उसकी जो क्रिया है वो कहां पहुंचती है, उस डाल में पहुंचती है। और जब डाल में क्रिया पहुंचती है तो फिर डाल के जो आम है वो नीचे गिर जाते हैं। बात इतनी है, अपने को ऐसा लगता है कि कितनी प्रक्रिया छोटी सी, लेकिन वहां कितनी प्रक्रिया घटी। उस व्यक्ति में क्रिया हुई, उस व्यक्ति ने उसके तने को पकड़ा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, और उसके बाद अच्छा आप उसके पूरे तने को हिला दे तो आप आम के उस तने को पकड़ो, उसी को हिलाओ, हिलेगा? आपकी क्रिया उसमें जाएगी नहीं, कारण कि बहुत मजबूत है। जब तक उसको हिलाने योग्य क्रिया आपके अंदर ना हो, शक्ति, तब तक आप उसको नहीं ला सकते हैं। बड़ी चीज में क्रिया पैदा करना हो तो क्रिया पैदा करने वाले को भी बड़ा होना चाहिए। यदि क्रिया पैदा करने वाला कमजोर है तो बड़ी चीज में क्रिया पैदा नहीं कर सकता है। अब आप डाल पर गए, डाल छोटी थी, आपके हिलाने के अंदर थी, आपने हिलाया, वो क्रिया का आधार बनी, डाल क्रिया का आधार बनी, तब आप आम गिराने में समर्थ हो पाए। चले अब हम आत्मा को छू लेते हैं थोड़ा। आत्मा के साथ आपका संबंध तो है, जैसे आप मारना चाहते हैं, क्या मारने के लिए, पांच भौतिक हैं, आप अपने थप्पड़ मारना चाहते हैं, किसको? आत्मा को मारना चाहते हैं, थप्पड़ मारना चाहते हैं। आपको थप्पड़ मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके हाथ में क्रिया तो है, ठीक है, आपका हाथ है, आपके हाथ में क्रिया है, आप चले आत्मा को थप्पड़ मारने, तो आत्मा का संबंध है कि नहीं आपके हाथ के साथ? आपके हाथ के साथ आत्मा का तो संबंध है, लेकिन वो आत्मा का संबंध, हाथ का संबंध आत्मा में क्रिया पैदा करने में समर्थ है कि नहीं? आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में बंदूक है, आपके हाथ में मिसाइल है, आपके हाथ में रॉकेट है, आपके हाथ में एटम बम है, और उस एटम बम का आत्मा के साथ संबंध है कि नहीं? उस एटम बम का आत्मा के साथ संबंध है कि नहीं? व्यापक है ना वो, आपका जो आत्मा है वो व्यापक है। नैयायिकों ने बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर परिभाषाएं भी दी हैं, जैसे आप आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आप बोलते हैं आत्मा आकाश की तरह सर्वगत है, जैसे आकाश का संबंध सबके साथ है। आकाशवत सर्वगत, आकाश के साथ सबका संबंध है। तो उन्होंने कहा कि भाई सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, ऐसा उन्होंने परिभाषा दी। व्यापक का अर्थ क्या है? व्यापक का अर्थ है सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संबंध हो, तभी तो व्यापक बोलेंगे आप। किसी के साथ संबंध हो और किसी के साथ संबंध ना हो उसको व्यापक बोलेंगे क्या? आपकी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चीजें व्यापक नहीं है, सबके साथ संबंध नहीं है। इसलिए सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम व्यापकत्वम, उन्होंने परिभाषा दी कि सभी मूर्त द्रव्यों के साथ इसका एक रस एक जैसा संबंध हो उसको व्यापक बोलते हैं। और ऐसी चीज आपके सामने कौन सी है उन्होंने गिनाया, आकाश, काल, दिक् और आत्मा। उन्होंने कहा आकाश का सबके साथ संबंध है, हमारा विवाद उसकी नित्यता में है। केवल वो नित्य मानते हैं और हम आकाश को भी अनित्य मानते हैं, लेकिन इतने अंश में हम दोनों स्वीकार करते हैं। आकाश का संबंध सबके साथ है, काल का संबंध सबके साथ है। अच्छा, कितना भी कोई आदमी छिप जाए बहुत गहरी गुफा में हिमालय की, तो उसके साथ काल का संबंध होगा कि नहीं? बहुत छोटा हो तो परमाणु के ऊपर भी काल का संबंध सभी। इसलिए जन्यानाम जनक कालो जगता माश्रय, देश का संबंध दैशिकता जो है सभी के साथ है, वो वस्तु छोटी हो बड़ी हो देश का संबंध होगा। और आत्मा का संबंध इसलिए गिना है उन्होंने, देश, काल, आकाश और आत्मा। उनके आत्मा दो प्रकार का, एक जीवात्मा परमात्मा, और हमारे यहां भी दो प्रकार का है। आप वाचार्थ लक्षार्थ बोलते हैं, इसलिए न्यायिकों के सिद्धांतों को आप अपने हिसाब से लगाएंगे तो अपने को लगेगा बिल्कुल। मैं आज पढ़ रहा था एक बात परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचनों में, एक बड़ी सुंदर बात कही। बौद्ध लोग आत्मा को पैदा हुआ मानते हैं लेकिन आत्मा का विनाश मानते हैं, और हम लोग आत्मा न पैदा होती है और न मरती। लेकिन अब बहुत गहराई से आप चिंतन करेंगे ना, तो हमारे यहां भी वाचार्थ लक्षार्थ तो मानते हैं। आपका अविनाशी अज जो आत्म तत्व है वो वाचार्थ में है कि लक्षार्थ में है? ये मेरे शब्दों को आप समझ रहे होंगे। आत्मा कभी पैदा नहीं होती है, कभी मरती नहीं है, ये बात आप वाचार्थ में बोलते हैं कि लक्षार्थ में बोलते हैं? आप लक्षार्थ में बोलते हैं, और आपका जो वाचार्थ है जो अविद्या विशिष्ट चैतन्य जो जीव रूप है, अहम पद का जो वाचार्थ है वो जीव रूप है, और अहम पद का जो लक्षार्थ है वो आत्म रूप है, शुद्ध चैतन्य प्रत्यक्ष है। तो आप जब अज अमर क्षण भाव विकारों से रहित सच्चित आनंद अखंड एकरस जो बोलते हैं, आप वाचार्थ में बोलते हैं कि लक्षार्थ में बोलते हैं? आप ध्यान दें ये बात, आप लक्षार्थ में बोलते हैं, इसलिए आपको लक्षणा करनी पड़ती है। हम ब्रह्मास्मि इस वाक्य में आपको लक्षणा करनी पड़ती है, तत्वमसी वाक्य में लक्षणा करनी पड़ती है। आपको समझना पड़ता है कि ये जो लक्षार्थ लक्षार्थ हैं ये एक हैं, ये वाचार्थ वाचार्थ जो हैं ये एक नहीं है। तो आप वाचार्थ में भेद मानते का भेद मानते हैं? हाँ, आप लोग बहुत सुबुद्ध हैं, आप बहुत सुबुद्ध श्रोता है, प्रेमपुरी के श्रोता है आप। आपके सामने वेदांत न बोले तो और कहां बोले आप वाचार्थ में भेद मानते हैं गिरीश भाई, और लक्षार्थ में अभेद मानते हैं। आप जब ब्रह्मास्मि का बोध होता है आपको तो वो लक्षार्थ लेकर भाई ये उपाधि से रहित वहां माया उपाधि को हटा दी, तत्पद वाचार्थ ईश्वर और उसकी जो माया उपाधि को हटा देंगे आप, और त्वमपद वाचार्थ जो जीव है उसकी उपाधि अविद्या हटा देंगे, वाचार्थ का त्याग किया और दोनों का जो शुद्ध चैतन्य है उसकी एकता। तो बात वही की वही बनी ना, न्यायिकों ने क्या कहा कि भाई जीव अनेक है आत्मा व्यापक, बड़ी गजब की बात बोली, न्यायिकों ने कहा आत्मा व्यापक है और वो कर्तव्य भोगता है। उन्होंने क्या बोला कि आत्मा व्यापक है और वो कर्ता भोगता है, सुखी दुखी है, लेकिन उन्होंने वाचार्थ और लक्षार्थ की चर्चा नहीं की। और आपके वेदांत में लक्षार्थ वाचार्थ करके उसका विभाजन किया, यदि आप लक्षार्थ और वाचार्थ एक करके बोलो तो आप भी ऐसा बोल सकते कि नहीं कि आत्मा नित्य है, वो कर्ता भोक्ता भी, आपके यहां वाचार्थ जो आत्मा है वो भी कर्ता भोक्ता है और जो लक्षार्थ आत्मा है वो नित्य है। अच्छा, आप बौद्धों के सिद्धांत को ले लेना, बौद्धों ने कहा कि आत्मा पैदा होता है लेकिन वो मरता नहीं है, तो आपको मैं पूछता हूं आपका आत्मा मरता है कि नहीं? आपका बाद तो कहते हैं ना, बौद्धों ने नाश बोला और हमने बाद बोला है, बौद्धों ने। अच्छा, आप जिसको बाद बोलते हैं त्रयकाला बाध्यत्वम आत्मा का लक्षण है, जो लक्षार्थ है जो तीनों कालों में बाधित नहीं होता है, कौन है वो? आत्मतत्व है, और वो आत्मतत्व लक्षार्थिक वाचार्थ है, लक्षार्थ। और जो बाध होता है, जिसका बाध माने बाधित हो जाता है, न कच्चे जायते जीव, आपका मानव उपनिषद में कारिका में कहा गया कि जीव जो है न कश्चित जायते, न कश्चित मिर्यते, वो आपका लक्षार्थ लेकर। और आपका जब आपको ज्ञान होता है तो ज्ञान होने के बाद बात किसका होता है? फिर वाचार्थ का। तो उस समय जीवत्व रहता है कि नहीं? आत्मज्ञान होने के बाद, लक्षार्थ का बोध होने के बाद आपके वाचार्थ का जो अर्थ, वाचार्थ रूप जो जीव है उसका बाद हो जाता है, इसलिए जीवत्व का बाद हो जाता है। ज्ञान होने के बाद जीव रहता है कि नहीं? वो बस बाद, बाद उसी को बोलते हैं। जीव भाव का अर्थ है, वहां बाद हो गया उसका, माने त्रैकालिक अत्यंत भाव का निश्चय है। उस समय आपको बोध होता है कि जीव नाम की कभी कोई चीज थी ही नहीं। भगवान बुद्ध ने यही तो बोला, और क्या बोला? वो शब्दावली का अंतर है। बुद्ध ने कहा आप जीव तो हैं लेकिन इसको आप मिटा सकते हो, आप इसको मिटा सकते हो। मिटा सकते हो का अर्थ क्या? बोध होने के बाद क्या जीव ही खत्म हो जाता है? वहां पर भी जीवत्व, वो अज्ञान नष्ट हो गया, जीव भाव नष्ट हो गया। इसलिए आपके वेदांत में जब आपका वेदांत बोलता हूं तो ये मत सोचना कि मेरा नहीं है। मैं आपका तादात में जोड़ने के लिए मैं बोलता हूं आपका वेदांत। आपको ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने के बाद होता क्या है? आप पंचदेशी कार को पूछना क्या आपको ज्ञान हुआ? बोले हाँ। बोले हुआ क्या? अरे बोले हुआ क्या हुआ? अरे बोले हुआ कुछ नहीं। अरे बोले कुछ बना बिगड़ा? अरे बोले कुछ नहीं, विगलित संस्कृति बंदा। बोले इसकी जो आसक्ति आसक्ति थी ना वो मिट गई, दृष्टि मिटी। यहां वस्तु को नहीं मिटाना है, यहां तो केवल दृष्टि को मिटाना है। और वो दृष्टि क्या? पहले दृष्टि क्या थी? सत्यत्व। इसलिए वेदांत में वस्तु नहीं मिटती है, वस्तुगत जो सत्यत्व है वो मिटता है। प्रतीति नहीं मिटती है, अपितु प्रतीतिगत जो सत्यत्व है वो मिटता है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान देना, वेदांत में प्रतीति तो रहती है, आपको ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने के बाद प्रतीति रहेगी कि नहीं? ये शरीर है, हाँ प्रतीति रहेगी, लेकिन प्रतीति में जो सत्यत्व है, प्रतीति में जो सत्यत्व है वो मिट जाता है। ज्ञानी को संसार की प्रतीति होती है कि नहीं? हाँ हाँ प्रतीति होती है, लेकिन प्रतीत उस उनके प्रतीति में सत्यत्व नहीं रहता है। और ध्यान देना, प्रतीति में जब सत्यत्व नहीं है तो वस्तु है कि नहीं? फिर आपको एक वेदांत का एक इसी सिद्धांत को विस्तार पूर्वक हम बता देते हैं, बड़ी वेदांत की गहरी बात है। कल मैंने आपको एक दृष्टांत बताया था स्वप्न का। राजा जनक को ज्ञान हुआ, उसके पहले उन्होंने एक स्वप्न देखा था। राजा जनक ने स्वप्न देखा, वो विस्तार से मैंने कल बताया था। और उसके बाद अष्टावक्र जी से मिलने के बाद मालूम पड़ा कि जैसी जागृति वैसे ही स्वप्न है, जैसे जागृति है वैसे स्वप्न है। आप ध्यान दें, जैसा स्वप्न है वैसी जागृति है। अब स्वप्न कैसा है? आप जिसको स्वप्न बोलते हैं वो चीज क्या है? आप वेदांत का वास्तविक सिद्धांत समझना चाहते हैं तो आप स्वप्न पर दृष्टि रखो। आप स्वप्न पर दृष्टि रखेंगे ना तो आपको वेदांत बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप वेदांत की अनुभूति में पहुंचना चाहते हैं तो आप स्वप्न पर ध्यान देना। परम पूज्य विरक्त शिरोमणि वामदेव जी महाराज, महाराज श्री बहुत मानते थे उनको। महाराज श्री बोलते थे कि साधु हो तो ऐसा, और महाराज श्री ने उन्हें उनके लिए आग्रहपूर्वक 6 महीने आश्रम में रहे, 6 महीने कार्यक्रम में भले ही जाए लेकिन आश्रम न छोड़े, बहुत मानते थे महाराज। वो बोलते थे कि मैं स्वप्न का एक्सपर्ट हूं, ऐसा बोलते थे। वो बोलते थे कि मैंने स्वप्न पर बहुत विचार किया, बहुत विचार किया, और बोले वेदांत को समझने के लिए स्वप्न का ही दृष्टांत पर्याप्त है। आप स्वप्न में जो पदार्थ देख रहे थे थोड़ा उस पर विचार करते हैं। आप स्वप्न देख रहे थे और क्या देख रहे थे? चलो एक मैं दृष्टांत सुना देता हूं। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति स्वप्न देखता था। एक ऐसे खान में पहुंच जाता था किसी गहरी गुफा में, और उसको बहुत सारा सामान मिलता वहां, सोने चांदी के बर्तन, हीरे माणिक मोती। वो बड़ा प्रसन्न हो जाता, प्रसन्न होकर वो आदमी अपने बोरी में वो सारी चीजें भरता जितना उठा सकता, और उठा करके जैसे दरवाजे तक पहुंच जाता हो, और अपने पत्नी को आवाज लगाता, आओ देखो मैंने सोना चांदी तुम्हारे लिए ये सारी चीजें लाई, और जैसे आवाज लगाता नींद टूट जाती, वो पत्नी को नहीं मिल पाता। और वो हमेशा इतना ही स्वप्न देखता था, वो परेशान हो जाता, कम से कम मैं थोड़ा आगे बढ़ू, पत्नी को दिखाऊं, ये सारी चीजें पत्नी को दूं, उतना अधूरा रह जाता। एक बार एक तांत्रिक के पास गया और उन्होंने कहा कि भैया ये समस्या है मेरी, और इतना स्वप्न देखता हूं इसके बाद टूट जाता है। उस तांत्रिक ने कहा कि मैं आपको ऐसा मंत्र देता हूं कि आप दोबारा स्वप्न नहीं देखोगे। उन्होंने कहा बात वो नहीं है, स्वप्न न देखने की बात नहीं है। बोले वो स्वप्न तो मैं हमेशा देखूं, बहुत सुंदर स्वप्न है वो, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्वप्न थोड़ा लंबा हो जाए, वो स्वप्न थोड़ा और खींचे, मैं पत्नी तक पहुंच जाऊं। समझ रही कि नहीं? तो हम भी क्या चाहते हैं, स्वप्न तोड़ना चाहते कि और लंबा खींचना चाहते? हम अपना स्वप्न भी थोड़ा लंबा खींचना चाहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते। अब वो आदमी बहुत सारे हीरे जवाहरात बोरी में भर के अपने घर में ले आता है, और जैसी उसकी नींद टूटती है तो उसका एक दो हीरा जवाहरात वहां पड़ा मिलता है कि नहीं? उसको अरे प्रतिदिन लाता है वो, और उसके बाद भी एक भी जवाहरात उसको नहीं मिलता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि स्वप्न क्या है? स्वप्न दृष्टा की दृष्टि है। स्वप्न दृष्टा की दृष्टि रेव ये वेदांत का बहुत ऊंचा सिद्धांत है। स्वप्न दृष्टा की दृष्टि है वो, वहां दृष्टि के अलावा सृष्टि नहीं है, इसी को दृष्टि सृष्टि बोलते हैं। स्वप्न में जो है वो दृष्टि रेव सृष्टि, वहां दिखाई देना उतना ही था, उसके आगे पीछे नहीं है, जितना दिख रहा था उतना ही, दिखना मात्र ही पदार्थ का अस्तित्व, उसी को बोलते हैं दृष्टि रेव सृष्टि, उसको बोलते प्रातिभासिक सत्ता। आपने सुना होगा प्रातिभासिक सत्ता का अर्थ वही है, केवल प्रातितिक सत्य है वो, केवल जितना दिखाई दे रहा था उतना ही है, उसके आगे नहीं है। लेकिन ये बात आपको कब मालूम पड़ी? अच्छा, जब आप बोरी भर करके वो ला रहे थे सोना चांदी रे मानिक मोती, और उस समय यदि कोई आकर के बोलता कि यार हमको भी थोड़ा दो तो देते क्या? अरे आप झगड़ा कर लेते, डंडा उठा लेते, मारपीट करते, मरते या मारते। आप बोलते भैया ये मैंने उठा, मैंने लाया। जीवन मरण का प्रश्न है वहां। लेकिन ये बात आपको कब मालूम पड़ी कि वो कुछ नहीं था? जगने के बाद मालूम। लेकिन जगने के पहले पूर्ण सत्य था, पूर्ण सत्य। और उस समय यदि स्वप्न में किसी ने आके बोला अरे ये क्या झंझट है, ये स्वप्न है भैया छोड़ो, हाँ, और वो वास्तविक जो तुम्हारा घर झोपड़ा है ना वो है, तो मानता? वो झोपड़े में रहता था और वो स्वप्न देख रहा था कि मैं महल में हूं हीरे मानिक मोती, और उस समय कोई आदमी आके बोलता कि तुम्हारा एक झोपड़ा है, वो सत्य है, मानता? इसलिए ध्यान देना, जैसे जागृति में आने के बाद स्वप्न मिथ्या मालूम पड़ता है, ध्यान देना, वैसे स्वप्न में जाने के बाद जागृति मिथ्या मालूम होती है। आप जागृति में आने के बाद आपको स्वप्न मिथ्या मालूम पड़ता है, लेकिन आप जब स्वप्न में जाते हैं तो आपकी जागृति मिथ्या मालूम पड़ती है। मालूम क्या, उस समय तो जागृति का अस्तित्व ही नहीं रहता है, केवल प्रतीति है। इसलिए ये सारी जो दुनिया है ना केवल प्रतीति मात्र है, केवल प्रतीति। अच्छा, आप प्रतीति को छूते हो कि वस्तु को छूते हो? अब छोड़ो वो स्वप्न की बात, अब मैं आपको जागृति में बता देता हूं मैं हूं कि नहीं, आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है कि नहीं मैं हूं, सचमुच मैं हूं? अरे मेरा शरीर है ये आपको मालूम पड़ रहा है, लेकिन सचमुच है क्या? है, अब मैं बताता हूं। आपके आंख की जो पहुंच है कहां तक है, पहली बात देखना, जिसको आप देखना बोलते हो, क्या चीज है? जैसे आप फोटो खींचते हो, आपका कैमरा बहुत अच्छा है, फोटो खींच लिया, तो आपने जो फोटो खींचा तब मालूम पड़ा कि आप है, ओहो इसके फोटो में दिखाई दिए हमारे गिरीश बाबू दिखाई दिया, हा क्या सुंदर है। और ये भी मालूम पड़ा कि गिरीश बाबू जी यहीं पर बैठे हैं, मालूम पड़ा? उस कैमरे ने क्या किया ये पहले बताओ। उस कैमरे ने आपके प्रतिबिंब को पकड़ लिया है, आपके प्रतिबिंब तक कैमरे की पहुंच थी, और उसने क्या प्रतिबिंब पकड़ा और आपको बता दिया। वैसे आपकी आंख क्या करती है? तो मैं हूं ये जो चीज है वो क्या चीज है? वो यही तो आभास है, केवल प्रतिबिंब। अच्छा, आप किसी को याद कर रहे हैं तो आप किसको याद कर रहे हैं? उसके प्रतिबिंब को याद कर रहे हैं कि आप उस आदमी को याद कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है। आपको लग रहा है कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, प्रिय व्यक्ति आपको याद आ रहा है, वो क्या है? वो मेमोरी से, मेमोरी के अलावा और क्या चीज है वो? आप जिसको छूना चखना सूंघना, ये सारी चीजें क्या है? मेमोरी है, एक संवेदना, ज्ञान मात्र है। हमारी पहुंच वस्तु तक नहीं, हमारी पहुंच केवल ज्ञान तक। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं, समय पूरा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं। वैज्ञानिकों ने ऐसे कुछ नक्षत्र ग्रह खोजे हैं जिसकी रोशनी आपके तरफ आ रही है, कुछ है उन्होंने रोशनी छोड़ी और रोशनी आपके तरफ आ रही है, कुछ ग्रह पैदा हुए रोशनी छोड़ी, लाखों वर्ष तक वो रोशनी आपके तरफ आ रही थी और वो नक्षत्र ग्रह मर गया, मिट गया और आपको मालूम पड़ रहा है, लेकिन आपको नक्षत्र मालूम पड़ रहा है कि उसकी रोशनी मालूम पड़ रही है, केवल रोशनी दिखाई दे, उसने उधर से रोशनी छोड़ी है केवल और वो मर गया, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए और वो रोशनी आपके तरफ आ रही है, अभी आई नहीं रास्ते में, और वो आपको क्या मालूम पड़ रहा है, रोशनी है लेकिन आपको तारा मालूम पड़ रहा है। बिना तारे की रोशनी, बिना तारे की रोशनी है वो, और वो आपको क्या मालूम पड़ रहा है, तारा। माने ऐसा समझना कि उसने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया है और वो मर गया, वो प्रतिबिंब आपकी आंखों में आ रहा है, आपके यंत्र में आ रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है कि ये तारा है, तो वो प्रतिबिंब बिना तारे का मालूम पड़ रहा है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो है। मैं यदि अपना प्रतिबिंब आपके तरफ न छोड़ू तो आपकी आंख को मालूम पड़ेगा क्या कि मैं हूं? अच्छा, तो मैं और मेरा प्रतिबिंब उसका डिस्टेंस कितना है आपको मालूम है? मैं बहुत सूक्ष्म बात बोल रहा हूं। दो चीजें हुई, आप बहुत सूक्ष्मता में चले जाइए, एक वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु और एक वस्तु का प्रतिबिंब, आप उस दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ तो होगा, वो वस्तु कितने दूर से अपना प्रतिबिंब छोड़ रहे हैं? अच्छा, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब भी आपकी आंखों में जा रहा है, इस शरीर का भी प्रतिबिंब आंखों में जा रहा है, तो ये और उसका डिस्टेंस और मेरे शरीर और आपकी आंख का डिस्टेंस में अंतर है? मेरे को कहना ये है, आप ध्यान दें, इस विषय को मैं फिर कभी उठाऊंगा, बहुत सूक्ष्म विषय है, आपको केवल प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और उस प्रतिबिंब के पीछे जो बिंब है वहां तक आपकी पहुंच पक्का है नहीं? ये बात पक्की है कि आपकी पहुंच बिंब तक नहीं है, आपकी पहुंच केवल प्रतिबिंब तक है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि बिंब न हो केवल प्रतिबिंब मालूम पड़े? मैंने आपको अभी बताया था एक उदाहरण देखिए, तो आपको जो मैं दिखाई दे रहा हूं इतना सत्य हो गया कि हो सकता है कि नहीं इसके पीछे बिंब ही न हो और केवल प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, पक्का? वेदांत बोलता है ऐसा ही है, ये बिंब की बिना ही प्रतीति है। वेदांत कहता केवल प्रतीति है, स्वप्न में क्या होता है, केवल प्रतीति है, केवल वस्तु नहीं है, केवल उसकी प्रतीति है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी को आभासवाद बोला है शास्त्र ने, कहा ये आभासवाद, ये केवल आभासित हो रहा है, इसके मूल में कोई वस्तु नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है वहां तक, वहां तक हमारी पहुंच नहीं। अच्छा, जब बाहर के भौतिक पदार्थों तक भी हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है तो फिर आत्म तत्व तक हमारी पहुंच होगी क्या? भौतिक पदार्थों की वहां तक पहुंच होगी क्या? नहीं। मैं आपको कल बताऊंगा कि आत्मा के साथ जो आपका संबंध है, आत्मा के साथ आपका जो संबंध है, पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, जो आत्मा को विकृत बना सके, तो आत्मा के साथ उसका संबंध होने के बाद भी व्यापकत्व संबंध तो है, लेकिन संबंध होने पर भी वो संबंध आत्मा में क्रिया पैदा करने में समर्थ नहीं है, इसलिए आत्मा को मारना भी संभव नहीं। हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। आज दीपावली की सबको शुभकामनाएं, राम राम। कल हम लोग गए थे समुद्र के किनारे, करीब 30-40 लोग थे और बड़ा आनंद आया। समुद्र को भगवान का रूप मान के, लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु को स्मरण करके, भगवान शंकर को, शंकर जी को याद करते हुए दीपदान किया, बड़ा आनंद आया। अभी आप सीधे बैठ जाए, थोड़ा सा हम जप करेंगे। ओम ह्रीम नमः शिवाय, 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 ओम शांति शांति शांति।